कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पहला शमूएल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन से आप आत्मिक लाभ अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे। परमेश्वर से प्राप्त की गई आशीषों को हमसे बांटिए और लगातार प्रार्थना में रहकर सुनते रहिए सत्य वचन।
हे यीशु, अब तो है तेरा ही सरा जल रहा, आज क्यों ये घर है तेरा। हे यीशु, अब तो है तेरा ही आसरा, जल रहा आज क्यों ये घर है तेरा। तन वही
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए रेडियो के साथ में बैठते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन एक साथ हम अध्ययन कर सकें। मैं उन नए श्रोता मित्रों का भी स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम शमूएल नबी की पुस्तक, जो पुराने नियम की पुस्तक है, उससे अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि फिलिस्ती इसराइल को युद्ध में हराकर वाचा का संदूक छीन लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें एक अति लाभकारी शक्ति मिल गई है। वे उसे अपने देवता दागोन के भवन में रख देते हैं। परिणाम स्वरूप दागोन की मूर्ति का सिर और हथेलियां कटी हुई पाई जाती है, तो वे उसे हटाकर दूसरे नगर में भेज देते हैं। परंतु उनका विनाश और कष्ट थमते ही नहीं। अंततः वे हार कर निर्णय लेते हैं कि संदूक को इसराइल को लौटा दिया जाए, तो वे उसे बैलगाड़ी पर रख कर भेज देते हैं। बैलगाड़ी बेतशेमेश में यहोशू के खेत में जाकर रुक गई। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पहला शमूएल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, यहोवा का संदूक फिलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैं ठड्ढा नहीं कर रहा हूँ, परंतु वाचा का संदूक ऐसे था जैसे हाथ में गर्म आलू। दागोन की मूर्ति उसके सामने गिर जाती थी। वह उपासना के लिए संतोषदायक मूर्ति नहीं थी। गत के लोग तो दुखी हो गए थे, अतः उन्होंने संदूक को एक्रोन भेज दिया, परंतु वे भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे। हम पहला शमूएल के पुस्तक 6 अध्याय उसके 2 से 4 पद में पढ़ते हैं। तब फिलिस्तियों ने याचकों और भावी कहने वालों को बुलवाकर पूछा कि यहोवा के संदूक से हम क्या करें, हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। वे बोले, यदि तुम इसराइल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही न भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दें। वे बोले, फिलिस्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिल्टियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हैं। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिस्ती वाचा के संदूक से छुटकारा पाना चाहते थे, परंतु जानते नहीं थे कि कैसे। अतः उन्होंने अपने पुजारियों और भावी कहने वालों से पूछा। तब उन्होंने कहा कि इसराइल के परमेश्वर की वाचा के संदूक को खाली न भेजें, उन्हें उसके साथ चढ़ावा भेजना था। यह चढ़ावा फिलिस्तियों की उपासना की निस्सारता को प्रकट करता है। अनेकों का प्रश्न है कि परमेश्वर ने फिलिस्तियों को अपने देश से बाहर क्यों रखा। प्रतिज्ञा का देश संसार के चौराह पर स्थित है और वहां के निवासी विश्व के लोगों पर प्रभाव डालेंगे। परमेश्वर ने उसकी उपासना की निस्सारता के कारण उन्हें अलग किया था। वे पूर्ण रूप से परमेश्वर से दूर हो गए थे। यहाँ परमेश्वर उन्हें फिर एक अवसर देता है। पलिश्तियों की भेंट में 5 सोने की गिल्टियां और 5 सोने के चूहे थे। हम पहला शामुएल 6 अध्याय के 11 पद में पढ़ते हैं, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिल्टियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब पलिश्तियों ने वाचा का संदूक इसराइल को लौटाया, तब उन्होंने उसे उठाकर गाड़ी पर रखा, परंतु उन्हें कोई हानि न हुई। क्यों? स्पष्ट कहो तो वे इससे अधिक उचित रीति जानते भी नहीं थे। परमेश्वर ने उनसे इस काम का लेखा नहीं लिया, परंतु इसराइल उचित रीति से जानता था, और हम देखेंगे कि उचित रीति का पालन न करने के कारण परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। ऐसा अंतर क्यों? क्योंकि वे उचित रीति जानते थे और उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम पहला शामुएल 6 अध्याय उसके 12 पद में देखते हैं, तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया, वे सड़क ही सड़क बंबाती हुई चली गई, और न दाहिने मुड़ी और न बाएं, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश के सिवाने तक गए। गाड़ी में जोती गई गायें अपने सहज वृत्ति के विपरीत चल रही थी, वे अपने बछड़ों को छोड़कर इसराइल जा रही थी। इससे पलिश्तियों को स्पष्ट समझ में आ गया कि उनके कष्ट परमेश्वर की ओर से थे। तब हम पहला शामुएल 6 अध्याय उसके 13 से 15 पद में पढ़ते हैं, और बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए, और गाड़ी यहोशू नाम एक बेतशेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया, और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक के समेत जो साथ था जिसमें सोने की वस्तुएं थी उतार के उस बड़े पत्थर पर धर दिया, और बेतशेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। मित्रों, इसराइली पलिश्तियों से अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे, उन्हें इस कार्य के लिए सराहा गया। तब हम पहला शामुएल 6 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, यह देखकर पलिश्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। मित्रों, पलिश्तियों ने देखा कि वाचा का संदूक यथास्थान पहुंच गया है, वे प्रसन्न हुए कि उन्होंने उससे छुटकारा पा लिया है। तब हम पहला शामुएल 6 अध्याय उसके 19 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनसे 70 पुरुष और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले, और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि बेतशेमेश के पुरुषों ने वही किया जो परमेश्वर की ओर से वर्जित था। वाचा का संदूक महापवित्र स्थान में रहता था, केवल महायाजक उसका दर्शन कर सकता था, वह भी वर्ष में केवल एक बार। जंगल में जब वाचा का संदूक उठाया जाता था कि आगे बढ़े, तब उसे ढांक दिया जाता था। फलिस्तीनियों को तो यह नहीं पता था, परंतु इसराइली इस बात को जानते थे। पहला शामुएल 6 अध्याय के 20 में हम पढ़ते हैं, तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। मित्रों, ऐसा नहीं था कि उन्होंने वाचा के संदूक में झांक कर वर्जित वस्तु देखी, वह तो मात्र एक संदूक था, परंतु मुख्य बात तो यह थे कि वह संदूक महापवित्र स्थान में रहता था, जहां परमेश्वर अपनी प्रजा से भेंट करता था, और इस समय वह उनसे भेंट नहीं कर रहा था, क्योंकि वे उससे विमुख हो गए थे। उनका विद्रोह और ईश निंदा उनकी अवज्ञा से प्रकट है, इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें दंड भी दिया। पहला शामुएल 6 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने किर्यत्यारीम के निवासियों के पास यूं कहने को दूत भेजे कि पलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। मित्रों, यहाँ पर देखिए कि वे अंधविश्वासी होकर वाचा के संदूक से छुटकारा पाना चाहते थे, अतः उन्होंने किर्यत्यारीम के निवासियों को संदेश भेजा कि आकर वाचा का संदूक ले जाएं। दूसरे शब्दों में इसराइल वाचा के संदूक को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर की प्रजा उसके पास लौट आने को तैयार नहीं थी, यह कितनी ही दुखद बात है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 7 में देखेंगे, शामुएल जागृति का प्रतिपादक है और एबनेजर तक विजय को प्राप्त करते हैं। 20 वर्ष बाद इसराइल वाचा के संदूक को ग्रहण करने के लिए तैयार हुआ। इसराइल के बाल देवता और अस्तोरेत देवी का परित्याग किया गया। देखें जागृति में शामुएल की मुख्य भूमिका क्या है। पहला शामुएल 7 अध्याय उसके 1 और 2 पद। तब किर्यत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजर को पवित्र किया। किर्यत्यारीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इसराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। मेरे प्रियो, 20 वर्ष पश्चात इसराइल में धर्म सुधार आया। उन्होंने बाल देवता और अस्तोरेत देवी को त्याग कर परमेश्वर की सच्ची उपासना की। अब उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता का बोध हुआ। मेरे मित्रों, आज भी परमेश्वर के वचन के प्रति रुचि का नवीनीकरण दिखाई देता है। यह मेरे आनंद का कारण है, क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि परमेश्वर की प्रजा को बाइबल पर चलना, अर्थात उसके वचन पर चलना है। मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल की 66 पुस्तकें उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का वचन है। मैं बाइबल की एक निष्ठा और अचूक प्रकृति पर विश्वास करता हूं, और सच तो यह है कि हमें बाइबल की शिक्षाओं में लौट आना है। हम एक लंबे समय से परमेश्वर के वचन में लौट आने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु हमारी उन्नति अति विलंबित रही है। मित्रों, अभी कितना समय और लगेगा। आज मनुष्य राजनेताओं की प्रतिज्ञाएं सुन सुनकर थक चुका है, क्योंकि वे पूरी ही नहीं होती है। मैं उनकी ओर से कहता हूं कि वे प्रतिज्ञा पूर्ति में अक्षम है, परंतु वे प्रतिज्ञा अवश्य करते हैं। नेताओं द्वारा तरह तरह के समाज सुधार सुझाव किए जा रहे हैं, परंतु वे कार्य साधक नहीं होंगे। अति संभव है कि घोर निराशा में मनुष्य परमेश्वर के पास आए। इसराइल के साथ यही हुआ था, वे 20 वर्ष बाद थक हार कर परमेश्वर के पास आए। हम पहला शामुएल 7 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं। तब शामुएल ने इसराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इसराइलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। मेरे प्रिय मित्रों, यह वास्तव में शामुएल की महान सेवा का आरंभ है। इसराइल मूर्ति पूजा में लीन था। वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से विमुख हो गए थे। वे युद्धों में लगातार पराजित होते थे और निराश हो चुके थे। अब वे परमेश्वर के सामने विलाप करने लगे हैं। हमें भी परमेश्वर के पास लौट आना है। मनुष्यों के मन में एक भूख है। वे कहते हैं, हम परदेश में सूअरों की फलियां खाते खाते थक गए हैं, हम पिता के घर लौटना चाहते हैं। मेरे मित्रों, उन्हें वचन के द्वार से ही प्रवेश करके लौटना होगा। हम में से कई लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास लौटें, लेकिन अपने तरीके से। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके तरीके से, अर्थात उसके द्वार में से होकर के वापस लौटें। पहला शामुएल 7 अध्याय उसके 5 और 6 पद में। फिर शामुएल ने कहा, सब इसराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया, और उस दिन उपवास किया, और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शामुएल ने मिस्पा में इसराइलियों का न्याय किया। मेरे प्रिय मित्र, हम देखते हैं कि शामुएल इसराइल का भविष्यवक्ता ही नहीं, न्यायी भी था। यहां हम देखते हैं कि इसराइल मूर्तियों को त्याग कर सच्चे परमेश्वर के पास आ रहा है। शामुएल उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, और वे अपने पापों का अंगीकार भी करते हैं। परमेश्वर की प्रजा के लौट आने का यही एक मार्ग है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। मेरे मित्रों, मैं परमेश्वर के आशीषों के अनेक अन्य मार्गों की चर्चा सुनता हूं, परंतु मुझे बड़े बड़े अक्षरों में कहने दीजिए, वरन ज्यों का त्यों कहने दीजिए। परमेश्वर की प्रजा को जो करना है वह यह है कि वह परमेश्वर के पास जाए और अपने पापों का अंगीकार करे, अर्थात अपने पापों को मान ले। उन्हें परमेश्वर के वचन की ज्योति में आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। यदि सच्चा आत्मनिरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23 पद में हम इसे पाते हैं, और हमें विश्वास भी होगा कि हम मसीह यीशु का लहू, परमेश्वर का पुत्र का लहू, हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। पहला योना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में हम इसे पाते हैं कि मसीह यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। मित्रों, आइए हम आगे देखें। एबनेजर में विजय, 1 शमूएल 7 अध्याय उसके 8 से 11 पद में लिखा है, और इसराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़ जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीवा मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इसराइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था उस समय पलिश्ती इसराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इसराइलियों से हार गए। तब इसराइली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने इसराइल को महान विजय प्रदान की और बहुत समय बाद उन्हें यह उनकी पहली विजय मिली। वे मूर्ति पूजा में मग्न थे और परमेश्वर के विरोधी हो गए थे। जब उन्होंने परमेश्वर में मन लगाया अर्थात वे परमेश्वर की ओर फिरे, तब शमूएल ने पापों का अंगीकार करवाया और परमेश्वर के पास लौट आने की शपथ उन्हें दिलवाई। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें एक ही बार में पलिश्तियों पर विजय दिलाई। हम 1 शमूएल 7 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। मेरे मित्रों, एबनेजर का अर्थ है सहायता की चट्टान। यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। वह पत्थर एक स्मारक भी बन गया। अतीत के साथ साथ वह एक पहचान, एक वर्तमान प्रतीक भी था। वह प्रकाशन का पत्थर, भावी ध्यान देने हेतु एक पत्थर था। यहां तक अर्थात इस स्थान तक, इस समय तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। अतीत की ओर दृष्टिपात हमारे लिए एक प्रथा बन गई है। स्मरण कीजिए कि परमेश्वर ने पौलुस के मुख से फिलिपी की कलीसिया को क्या कहा था, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मेरे मित्रों, क्या परमेश्वर आपको इस स्थान तक ले आया है? क्या वह आज आपकी अगुवाई कर रहा है? क्या वह आपका मार्गदर्शन कर रहा है? यदि वह कर रहा है तो कहें, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। क्योंकि उसने इस क्षण तक आपकी सहायता की है तो वह आगे भी करता रहेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हमें स्मरण शक्ति इसलिए दी है कि हम कह सकें कि यहां तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। यहोशु इस योग्य था कि कहे, जिसे यहोशु 24:15 में हम पढ़ते हैं, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही का सेवा नित करूंगा। दाऊद भी कहने योग्य था, भजन संहिता 107:1-2 पद में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। मित्रों, मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि ओह, परमेश्वर भला है। वही एकमात्र है जिसने हमारी सहायता की है और करेगा भी। मेरे प्रियों, कुछ समय पूर्व एक व्यापारी ने कहा था, आप जानते हैं कि समय का उपयोग बैंक के शब्दावली का सा है। बीता हुआ कल काटा हुआ चेक है, आने वाली कल प्रेमेश्वरी नोट है, परंतु आज नगद है। बुद्धिमानी से खर्च करें। मित्र, क्या आप परमेश्वर का अपने जीवन में बोध कर सकते हैं? एबनेजर चट्टान से शमूएल का यही अभिप्राय था। वह प्रकाशन की चट्टान था। उसका अर्थ अब तक ही नहीं, अब से आगे भी था। दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। तब उसने भविष्य को देखकर कहा, मुझे कोई घटी न होगी। भजन संहिता 23:1 में, किसी ने कभी कहा था कि मैं भविष्य में अत्यधिक रुचि रखता हूँ क्योंकि मैं अपना शेष जीवन वहीं बिताने की आशा रखता हूँ और मैं तर्क के साथ निश्चित करना चाहता हूँ कि यह भविष्य कैसा होगा। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 28 पद में पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। डॉक्टर आर ए टोरी हमेशा कहा करते थे कि रोमियो 8 अध्याय के 28 थके मन के लिए एक कोमल तकिया है। हम सबको एबनेजर पत्थर की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में भी एक एबनेजर है। 1 सामुएल 7 अध्याय के 13 पद में लिखा है, तब फलिस्ती दब गए और इसराइलियों के देश में फिर ना आए, और सामुएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिस्तियों के विरोध बना रहा। मेरे विचार में हम कह सकते हैं कि इस युद्ध के बाद फलिस्ती कभी भी पहले के समान प्रभावी एवं अमेक भैरी नहीं रहे। यह एक महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध था और उसकी याद में यह पत्थर खड़ा किया गया था। यह पत्थर उत्तर पश्चिम यरूशलेम से 3 या 4 मील उत्तर में था और नगर से यह दिखता था। हम 1 सामुएल 7 अध्याय उसके 15 से 17 पद में पढ़ते हैं, और शमूएल जीवन भर इसराइलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इसराइलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहां उसका घर था लौट आया और वहां भी इसराइलियों का न्याय करता था, और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। मेरे मित्रों, कहानी यही है। शमूएल इसराइल का न्यायी एवं भविष्यद्वक्ता था। हम कह सकते हैं कि वह उस समय का एसडीएम था। वह बेतेल, गिलगाल, मिस्पा जाकर रामा लौट आता था, यरूशलेम का उत्तरी भाग। उसने इन सब स्थानों में इसराइल का न्याय किया। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 8 से जारी रखेंगे। इसराइल परमेश्वर का त्याग करके राजा मांगता है। शेष 1 और 2 सामुएल के ऊपर होशे 3 अध्याय उसके 11 पद में लिखा जा सकता है, मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। मेरे मित्रों, शमूएल एक महान न्यायी और परमेश्वर का भक्त था। उसका पालन पोषण मिलाप वाले तंबू में हुआ था, जहां उसने एली के पुत्रों का अधर्म देखा था और उन्हें परमेश्वर से दंड पाते हुए भी देखा था। इसके उपरांत भी देखिए कि उसने क्या किया। 1 सामुएल 8 अध्याय उसके 1 पद में, जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इसराइलियों पर न्यायी ठहराया। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, शमूएल ने अपने बाद अपने पुत्रों को न्यायी बनाया जबकि वे अयोग्य और अक्षम थे। यह उसकी चूक थी। शमूएल एक सिद्ध न्यायी, एक उत्तम भविष्यद्वक्ता और परमेश्वर का भक्त जन था, परंतु पिता स्वरूप वह एली की न्याय विफल रहा। 1 सामुएल 8 अध्याय उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, उसके जेठे पुत्र का नाम योवेल और दूसरे का नाम अबिया था। ये बेशेरबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। मित्रों, ये शमूएल के पुत्र थे। ये पूरे अनिष्ट थे। बड़ी विचित्र बात है। आज हम अधिकतर यही देखते हैं अनेक पासवानों या पादरियों को, क्योंकि बहुतों ने मुझसे कहा है, ऐसा क्यों है कि कलीसिया में एक ईश्वर भक्त परिवार होता है परंतु उसके पुत्र और पुत्रियां आवारा और नशेड़ी होते हैं? इसकी प्रायः कोई व्याख्या नहीं है। मित्रों, शमूएल एक ईश्वर भक्त जन था, परंतु उसके पुत्रों के काम को आप देखें। 1 सामुएल 8 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम देखते हैं, तब सब इसराइली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। मित्रों, अब यहाँ पर देखिए कि इसराइल संभवतः पड़ोसी राष्ट्रों से प्रभावित होकर राजा चाहता है। उसको शमूएल की वृद्धावस्था और उसके पुत्रों की सांसारिकता का बहाना मिल गया था। 1 सामुएल 8 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। मेरे प्रिय मित्रों, शमूएल द्वारा अपने पुत्रों को इसराइल का न्यायी बनाया जाना इसराइल के लिए एक अच्छा बहाना हो गया था कि वे राजा की मांग कर सकें। निसंदेह यह शामुएल के दिल को दुखाने वाली बात थी। परमेश्वर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि इसराइल ने जो उससे कहा है उसे करने दे, अर्थात परमेश्वर का उन्होंने त्याग किया है। शामुएल के पुत्र तो एक बहाना थे, परंतु परमेश्वर की प्रभुता का त्याग मुख्य बात थी। शामुएल ने इसराइल को चिता दिया था कि राजा रखना कैसा होगा। उसने उन्हें समझाया कि राजा उन पर शासन करेगा, वह उनके पुत्रों को सेना में भर्ती करेगा और उनकी पुत्रियों को नौकरानियां एवं खाना पकाने वाली बनाएगा और उनके खेतों का भाग, दाख की बारी, जैतून और पशु अपने लिए ले लेगा और अंत में जब वे दुखी होकर कष्टों में पड़े पुकारेंगे तब परमेश्वर नहीं सुनेगा। इसके बावजूद भी उन्होंने नहीं माना। हम पहला शामुएल 8 अध्याय उसके 19 से 22। तो भी उन लोगों ने शामुएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शामुएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शामुएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शामुएल ने इसराइली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइल हट करने लगा, अतः परमेश्वर ने उन्हें राजा दिया। मूसा के युग में इसराइल के विषय जो सच था वह अब भी सच ही था। हम भजन संहिता 106 उसके 15 में पाते हैं, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। मेरे मित्रों, परमेश्वर उनके राज्य की मांग को तो पूरी करेगा परंतु इससे उन्हें लाभ नहीं होगा। परमेश्वर का मार्गदर्शन फिर भी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ही दिया जाएगा। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर सीधा राज्य से बात नहीं करता था परंतु भविष्यवक्ताओं के द्वारा से जो उसे परमेश्वर का वचन सुनाता था, राजा चाहे तो उसे माने या ना माने। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरे लिए जीव यीशु परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर। तेरे लिए जीव यीशु परमेश्वर, जिंदगी की राह में साथ है तेरा, जिंदगी की राह में साथ है तेरा। तेरे बिंद के मुझे घोर अंधेरा, आया है रंग तू एक सवेरा, आया है रंग तू एक सवेरा। धन्य है, पवित्र है नाम यीशु तेरा, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर। तेरे लिए जीव यीशु परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर। तेरे लिए जीव परमेश्वर।